ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। चारों ओर फैला हुआ प्रभु प्यार का समंदर, तो आज इस भट्टी का दूसरा दिन है, कईयों के लिए तो पहला दिन। बाबा 16 तारीख को आ रहे हैं, जब वो आए तो हमें उसे कुछ सौगात भी देनी चाहिए। कौन सी सौगात हम उसको देंगे कौन सी सौगात हम भगवान को देंगे ऐसी सौगात की जिसे वो देखकर ही खुश हो जाए? कौन सी सौगात हो सकती है? उसे कौन सी सौगात पसंद है? वो कौन सा उपहार उसको दे कौन सा उपहार? स्नेह की सौगात देनी है उसे, और क्या उपहार देंगे उसे? पवित्रता का और संपूर्णता की और ट्रस्टी बनकर क्या? सब कुछ बाबा का है। हम पूछ रहे हैं, भगवान आएगा कल से बराबर 21 दिन, तो हम उसे क्या दें? अपनी कमी कमजोरी दे दे, चलो, और मन मरा भाव, और क्या देंगे उसे? धन्यवाद बस और क्या देंगे? सेवा का सबूत। और बाबा को एक सौगात देनी है, और वो सौगात है श्रेष्ठ स्थिति की सौगात, वो सौगात है फरिश्ता स्थिति की सौगात। ये सौगात हमें उसे देनी है। केवल बाबा 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 कहने से नहीं होगा। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक वो नहीं जो केवल कहता है लॉर्ड लॉर्ड, हे प्रभु, बाबा बाबा, परंतु वो दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो उसकी श्रीमत है, उस पर जो चलता है। श्रीमत ही जिनका जीवन है, श्रीमत ही जिनका जीवन है, ऐसी आत्माओं को देखकर वो खुश होता है। उसे श्रेष्ठ स्थिति की सौगात देनी है, उसे फरिश्ता स्वरूप की सौगात देनी है। ऐसी सौगात देने के लिए हम क्या करें? तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है तपोवन की छाया में। 21 दिन तपोवन की छाया में। ये भट्टी सार्थक तभी होगी जब हम यहां से परिवर्तित होकर निकलेंगे। ये भक्ति मार्ग नहीं है जहां केवल जाकर बैठना, सुनना और आ जाना। सुना तो बहुत है, अब अनुभव करो। सुना तो बहुत है, अब स्वरूप बनो। विदेश में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया की वो लाइब्रेरी बहुत पहले बनी हुई, जिसे 6वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने आकर जला दी। 6 मास तक ये ग्रंथालय जलता रहा, जैसे भारत की नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा, उससे भी बड़ा यह ग्रंथालय था। कहते हैं कि उन किताबों में से एक किताब बच गई, और एक दिन एक व्यक्ति के हाथ में वो किताब आ गई। उस किताब में ऐसे ऐसे रहस्य लिखे थे कि यदि वो चीज कोई कर दे तो कहां से कहां पहुंच जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस किताब में लिखा था कि पारस पत्थर कहां मिलेगा। तो एक व्यक्ति था जिसे ये किताब मिली, और जिसने ये किताब पढ़ी, और उसने सोचा इस पारस पत्थर को मैं प्राप्त करूंगा। उसने एक मार्ग था, वो विधि लिखी थी कि फला फला समंदर के किनारे पर जाकर जितने पत्थर हैं उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस पत्थर है। पहचान कैसे? पहचान ऐसे थी कि जो पत्थर पारसमणि होगा वो थोड़ा गर्म होगा, बाकी जो पत्थर होंगे वो ठंडे होंगे। तो व्यक्ति जाता है, सोचता है मुझे ये प्राप्त करना ही है। एक एक पत्थर को उठाता है, पाता है पत्थर ठंडा है, परंतु वो सोचते हैं अगर मैं यहीं फेंक दूं तो काम बढ़ जाएगा, क्यों ना मैं इसे समंदर में फेंकूं। तो एक एक पत्थर उठाता है और पाता है वो तो ठंडा है, समंदर में फेंकता है। रोज ये करता है, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, साल गुजर जाता है, ये करता ही रहता है। पत्थर मिलता है, पकड़ता है, ठंडा है, फेंक दिया। पत्थर मिला, ठंडा है, फेंक दिया। एक साल, दूसरा साल भी गुजर जाता है, तीसरा साल भी गुजर जाता है, और एक दिन अचानक उसके हाथ में एक पत्थर आता है और उसको लगता है ये गर्म है, और वो तुरंत उसे फेंक देता है। आप सब से प्रश्न है, ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा वो ये कर भी किस लिए रहा था कि पारस पत्थर मिल जाए। पारस पत्थर मिला, हाथ में उठाया, गरम था परंतु फेंक दिया। क्यों? आदत। कोई भी चीज यदि बार 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 की जाए तो वो आदत बन जाती है। इसका अर्थ हमारे पास दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक मैकेनिकल माइंड, हैबिचुअल माइंड, रोबोट माइंड। करना भर इतना है कि आदत बनानी है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, फिर वो आदत ही स्वतः ही कार्य करती है। जैसे कल उदाहरण दिया था ना उस सिपाही का, जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था, जो कि रिटायर्ड सैनिक था, और कुछ शरारती बच्चे, जब वो बहुत सारा सामान लेके चल रहा था तो जोर से उन्होंने चिल्लाया क्या, अटेंशन, और वो अटेंशन हो गया और सामान नीचे गिर गया। क्यों हुआ ऐसे? बरसों की उसकी आदत थी। 21 दिन, कल से 21 दिन। इन 21 दिन का बड़ा महत्व है। बाबा भी कई बार कहते हैं 21 दिन की भट्टी करो। इस 21 दिनों में क्या हो जाता है? पाश्चात्य जगत के कई सारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनस्विद, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है। 1960 में एक किताब आई थी जिसका नाम था साइकोसाइबरनेटिक्स। साइकोसाइबरनेटिक्स डॉक्टर मैक्सवेल मार्स, उस किताब में एक अद्भुत बात लिखी है। वो किताब का ये जो लेखक है, पहले ये सर्जन था, बाद में वो मनोचिकित्सक बना, प्लास्टिक सर्जन। उसने इस 21 दिन पर बड़ा रिसर्च किया है। उसने पाया कि जो लोगों का वो प्लास्टिक सर्जरी से फेस चेंज कर देता है, उन लोगों को अपना नया चेहरा स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से फेसलिफ्ट सर्जरी, नया चेहरा स्वीकार करने के लिए 21 दिन लगते हैं। और उसने पाया जिन लोगों का पैर काट दिया जाता है किसी कारण से, शायद सड़ गया, गैंग्रीन हो गया या और कुछ हो गया, वो लोग ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारा पैर नहीं है, फैंटम लिम, उनको लगता है पैर है। उसने रिसर्च की और पाया कि लोगों को ये स्वीकार करने के लिए कुछ समय लगता है। फिर से उसने रिसर्च की और पता चला लगभग 21 दिन। और एक बात उसने देखी, जब हम किसी नए घर में जाते हैं, उस नए घर में एडजस्ट होने के लिए, उस वातावरण में एडजस्ट होने के लिए पूर्ण रूपेण लगभग 20-21 दिन लगते हैं। ये उसकी ऑब्जर्वेशन से उस किताब में साइकोसाइबरनेटिक्स। 21 दिन क्यों? 7-7-7 तीन भाग है। पहले 21 दिन जो अपरिचित है उससे परिचित होने के लिए, जो अज्ञात है उसे जानने के लिए, जो अनफैमिलियर है उसे फैमिलियर होने के लिए, जो पता नहीं उसे पता होने के लिए। फर्स्ट, अगले 7 दिन उसे समझने के लिए पूर्ण रूपेण। पहला केवल जानकारी, इन्फॉर्मेशन, दूसरा जानना और साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा धारण भी करना, और तीसरा संपूर्ण रीति से धारण करना। तो ऐसी यदि कोई तपस्या करे 21 दिन की, तो बाबा जब 16 तारीख की शाम को आएंगे और हमें देखेंगे तो वो कितना खुश होगा। प्यार का सबूत ही वो है जो उसने कहा वो करना, जो उसने कहा वो नहीं किया और ऐसे ही नारे लगाते रहे मेरा बाबा के, तो वो खुश नहीं होगा। इसके लिए अभी 21 दिनों का हम कुछ प्लान बनाएंगे। 7 बातें हम आपको बताएंगे। ऐसी ये 7 बातें रोज करनी है। जिसका परिणाम ये होगा कि हम जो कहीं भटक गए हैं थोड़ा सा, हम जो कहीं श्रीमत को छोड़कर मनमत और परमत पर चले गए हैं थोड़ा सा, हम जो राह भूल गए हैं, हम जो विस्मृति की निद्रा में सो गए हैं, हम जो कहीं उसके प्यार से दूर हो गए हैं, उस प्यार तक आ जाए। सोचो ये भट्टी एक अवसर है, और सोचो ये मेरे अकेले की भट्टी है, मैं और कोई नहीं, एकल भट्टी। ऐसी सिंगुलर भट्टी में मुझे तपना है। तो हमें कुछ प्लानिंग बनानी होगी। जब तक प्लान नहीं तब तक, जब तक योजना नहीं, प्लानिंग नहीं, तब तक वो धारणा में और प्रैक्टिकल में और व्यवहारिक जीवन में भी साकार नहीं हो सकता। तो ऐसी सात बातें हमें करनी है, आज से ही या कल से उनकी शुरुआत करना है। और एक बात जो शुरुआत हो गई फिर वो स्वतः ही होते रहती है। मिनिमम पहले 3 दिन का लक्ष्य, फिर 7 दिन का लक्ष्य और फिर 21 दिन का लक्ष्य। 3 दिन वो चीज अगर करते रहे तो आदत बनना चालू हो जाती है। तो 3 दिन का सबसे छोटा टारगेट, फिर 7 दिन, अगर उसमें सफल हो गए तो फिर 7 दिन, सफल हो गए तो फिर पूरा 21 दिन उसको करना है। और 21 दिन अगर हो गई वो बात तो फिर वो आदत बन जाएगी, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आदत करेगी जो करना है। जैसे विकारों की आदत पड़ गई है, हम न चाहते हुए भी मन बार बार वहां पर जाता है। क्यों? जन्म जन्म की उसकी आदत है, उसको घसीट कर लेके जाती है, चाहती है कि ज्ञान और योग और तपस्या में आगे बढ़े, फिर भी विकार और वासनाएं चित्त को आंदोलित करती है, चित्त को घसीट कर ले जाती है उसी दलदल में और उसी किचड़े में और उसी नरक के गर्त में जहां पर हम पहले पड़े थे। तो सबसे पहले तो ये बाबा के पास चलते हैं और जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उसके लिए बाबा से विजयी भव का और सफलता भव का तिलक और वरदान लेकर आएंगे। सबसे पहली बात, पिछले सीजन की सारी अव्यक्त मुरलिया, टोटल 8 मुरलिया है। इससे पहले कि बाबा आए सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा उसको कहां रखी है, बराबर? अलमारी में है, बिस्तर के नीचे है, कहां है? अगर नहीं है तो निकालनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी कहीं से। सबसे पहला काम जो करना है, लास्ट सीजन की 8 अव्यक्तवाणियां हैं, 8ों की 8ों अव्यक्तवाणियां सबसे पहले तो ढूंढना कहां है। ऐसे कितने हैं कि जिनको पता है वो कहां है और ऐसे कितने हैं जिनको ढूंढना पड़ेगा? ढूंढने वाले कितने हैं वो बताओ, कि संकल्प आते ही अभी सोचना पड़ेगा पता नहीं कहां रख दी थी, या कहीं से मांगनी पड़ेगी, हमारे पास तो है ही नहीं, तब तो ली थी और रख दी थी कहीं। पहला कार्य कौन सा करना है आज? सबसे पहले ढूंढना है कहां है भी या नहीं, अगर नहीं है तो किसी से लेना। आजकल तो साधन इतने ज्यादा है कि सब प्राप्त हो जाता है, सब कुछ टीवी और इंटरनेट और सबसे मिल जाता है। 8 मुरलियां है, कल से एक एक मुरली पढ़ना, एक दिन में एक मुरली, एक दिन में एक या फिर 2 दिन में एक। तो सबसे पहला काम है अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज करना, जो कि लास्ट सीजन में चली है, इसके पहले कि बाबा आए, ताकि हमें यह तो पता चले कि बाबा ने कहा क्या था हमें करने के लिए, उसका होमवर्क क्या है। उसने कुछ होमवर्क भी दिया था या बस वाह बच्चे वाह और वाह बाबा वाह कह के चला गया था? कि होमवर्क भी दिया था, बाप बच्चों के दिल में, बच्चे बाप के दिल में, बस इतना ही कहा था कि और भी कुछ कहा था? चैतन्य दीपकों को देखने आए हैं दीपराज, इसके अलावा भी कुछ कहा था ना? बहुत कुछ कहा था, अच्छी अच्छी बातें कही थी, वो ढूंढनी पड़ेगी वहां से, छिपे हैं सब पॉइंट्स, उसको वहां से निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स। सबसे पहला कार्य है अव्यक्तवाणी, ढूंढना अव्यक्तवाणी, पढ़ना, आरंभ करना, पॉइंट्स निकालना। इस मुरली में, जैसे 14 अक्टूबर की पहली मुरली है, इस मुरली में बाबा ने क्या कहने को कहा है, होमवर्क क्या है इस मुरली से, पहले यह तो पता चले होमवर्क क्या है, तब यहीं जाके करेंगे। पता ही नहीं कुछ करना भी है तो हम तो फिर वैसे ही बाबा के सामने बैठ जाएंगे, चाहे मधुबन जाओ चाहे यहां। एक मुरली में वाक्य था ना, आते हैं मिलते और ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हम तो मिलके आ गए बाबा से। अभी अभी जो सीजन में मुरली चली थी उसमें वाक्य था एक, हम तो बाबा से मिलके आ गए। ऐसा मिलने से अनुभव नहीं होगा, अनुभव बहुत ऊंची चीज है, वैराग्य की भूमि पर अनुभव होता है, ईश्वरीय प्रेम की भूमि पर अनुभव होता है। ऐसे ही जाकर बैठ गए तो कभी कोई अनुभव नहीं होगा, ऐसा धधकता वैराग और ऐसा प्रभु प्रेम की आंख जहां है, जीवन में त्याग जहां है और तपस्या जहां है, वहां अनुभव होता है। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। इतनी सस्ती नहीं है कि वहां स्टेज पर घूमो और अनुभव हो जाओ हो जाए, अगर ऐसा होता तो सबको होता। इतनी बड़ी सभा की बाबा की, इतने सारे लोग सामने और अनुभव हो रहा है, शायद कहीं दूर माता बैठी है कोई, जिसको दिखाई भी नहीं देता बाबा क्या है, ढंग से सुनाई भी नहीं देता, हो सकता है उसी को अनुभव हो रहा है और किसी को नहीं। किस लगन से आई है आत्मा, भगवान इतना सस्ता नहीं कि उसे पैसों से खरीदा जाए। एक है अनुभव और दूसरा शब्द है अनुभूति, दो शब्द है। अनुभव वर्णन किया जा सकता है, अनुभव एक्सप्रेस किया जा सकता है, अनुभूति उससे भी ऊंची चीज है। अनुभूति मौन है, अनुभव तो फिर भी सुनाया जा सकता है, अनुभूति को सुनाने का कोई मार्ग नहीं, वो सर्वोच्च अवस्था है आत्मा की, प्रभु प्रेम में मगन आत्मा की वो अवस्था है अनुभूति। धर्म की परिभाषा एक शब्द में कवि स्वामी विवेकानंद ने दी है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अर्थात अनुभव। यदि अनुभव नहीं तो धार्मिक नहीं। अनुभव और अनुभूति, अनुभव से अनुभूति तक पहुंचना है। उसने क्या क्या कहा, उसने क्या क्या गृह कार्य दिया, उसने जो जो कहा मेरे जीवन में उनका क्या महत्व है, कहां वो लागू होते हैं, क्या मुझे भी कुछ करना है इस मुरली से, क्या मेरे लिए कौन सा कार्य है, ये ढूंढना उससे, ये सब सबसे पहला कार्य है। तो आज करेंगे सभी, सबसे पहले पिछले सीजन की सारी मुरलियां निकालना, सामने अपने टेबल पर रखना, एक डायरी एक पेन हो, डेट लिखना मुरली की और उसमें से 10 पॉइंट्स निकालना, एक एक मुरली से 10 पॉइंट्स, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि मेरे लिए बहुत पावरफुल है। पहला कार्य। दूसरा एक कार्य करना है, साकार मुरलिया। रोज जो हम साकार मुरली सुनते हैं उसका क्या करना है? दान देना, बांटना, इससे खुशी तो मिलती है आज का वरदान, परंतु खुशी की झलक के साथ और कौन सी झलक चाहिए? शक्ति की झलक। शक्ति की झलक के लिए उसको अपने अंदर समाना होगा, स्वरूप में लाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है तब ज्ञान शक्ति बनेगा, नहीं तो अल्पकाल की केवल खुशी। साकार मुरलिया जो भी है और हर दिन जो चलेगी कल से, उनमें से तीन चीजें करनी है उसमें। एक तो तीन ही चीजें हम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, प्रश्न, वरदान और स्लोगन। जो प्रश्न है और उसका उत्तर है, प्रश्न सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कम से कम 10 अलग उत्तर निकालने हैं चिंतन करके। बाबा ने कुछ प्रश्न पूछा, एक तो उत्तर लिखा हुआ है, दूसरा हम कुछ अपना चिंतन करें और कुछ नए उत्तर निकालें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकते हैं वो मुरली से ही उत्तर हो या मुरली के बाहर के भी हो, किसी और मुरली से हो, परंतु ये कार्य करना है। एक दूसरा वरदान। जरूरी नहीं है कि वरदान की जो पहली लाइन होती है भवो वाली, वो वैसी की वैसी याद की जाए। वो आज याद करेंगे, एक चार दिन के बाद भूल जाएगी, पर उसके अंदर जो विश्लेषण है वह व्यक्त वाणियों से लिया हुआ है। उसमें से कोई ना कोई, पहले तो उसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, एकाग्र चित्त से पढ़ना, उसमें क्या कहा जा रहा है वो समझना, उसके ऊपर चिंतन करना। तो दूसरा काम कौन सा है? वरदान के ऊपर चिंतन, और तीसरा कार्य स्लोगन। और ये तीन चीजें सारे दिन में हमारे मुख से निकलना चाहिए। कैसे निकलेंगी? जो भी साथी मिले उनसे यहां वहां की चर्चा न करके ये चर्चा की जाए कि आज के स्लोगन में बाबा ने क्या कहा। आपस में ज्ञान की रूहरिहान करो। ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य लिखे किताब में, वारे मैं ब्राह्मण आत्मा, उसमें 10वें नंबर का यह कर्तव्य है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। ज्ञान के वाक्य हमारे मुख से निकलते रहने चाहिए। तुम रूप बसंत हो, कल था ना, तुम्हारे मुख से रत्न निकलने चाहिए। अगर रत्न नहीं निकल रहे तो क्या निकलेगा? फिर पत्थर, यंगबान, तीर, और जो जो संपर्क में आएगा उसको हम घायल करेंगे। इसके लिए कौन सा कार्य करना है? रोज की मुरली से स्लोगन पर काम करना है, वरदान पर काम करना है, और प्रश्न हो सके तो उत्तर देखे ही ना, केवल प्रश्न देख लो। और क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, प्रश्न खाली सुबह सुबह पढ़ लो, अमृत वेले से भी पहले उठते ही। जो लोग यहां सुनने आते हैं वो मुरली सुने, प्रश्न लिखे, उत्तर भी लिखे, और बाद में फिर सोचना आरंभ करें कि और क्या क्या उत्तर हो सकता है। चिंतन, मनन, अध्ययन। तो दूसरा काम कौन सा करना है? साकार मुरलियों पर काम करना है। तीसरा, ये सारी आदत बनानी है हमको। आदत एक बार बनी कि वो स्वतः काम करेगी। फिर जैसे ही दिखा स्लोगन, जैसे ही कहीं महावाक्य दिखा तो चिंतन चालू हो जाएगा। तीसरा कार्य अमृत वेला। तीसरा काम कौन सा है? अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, या फिर अमृत वेले को नींद मुक्त अमृत वेला बनाना, निद्रा से मुक्त। और उसकी अवधि को बढ़ाना और समय फिक्स करना, वही टाइम। अगर किसी की नींद नहीं खुलती तो किसी को साथी बना सकते हैं, भाई भाई को साथी बनाए, बहन बहन को साथी बनाए, जो कि उन्हें कॉल कर दे, फोन कर दे, मिस कॉल कर दे, उठो, वो करे या वो करे, दोनों में से कोई एक दूसरे को कर सकते हैं। ज्ञान योग में एक दूसरे के साथी बनना है। तो अगर टाइम अभी भी फिक्स नहीं है, कभी 3:15, कभी 3:30, कभी 3, कभी 4:15, कभी 4, कभी 4:30, तो कभी 5, पता ही नहीं चलता है। एक भक्त था जो सुबह सुबह उठता था और भगवान की प्रार्थना करता था, सुबह सुबह 5 बजे उठकर। एक बार जब वो उठा तो देखा 6 बज गए हैं। इतना रोया कि प्रभु ऐसा तुम, मैंने क्या अपराध कर दिया, क्यों तुमने मुझे जल्दी नहीं उठाया। पश्चाताप होने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि ऐसा मैंने क्या पाप किया, मैं तुम्हें इतने सालों से याद करता हूं सुबह उठ के, आज तुमने मुझे क्यों उठा नहीं दिया, क्यों तुमने मुझे सुला दिया। फिर रात में फिर सोता है और दूसरे दिन सुबह सुबह 5 बजे आवाज आती है, उठो। तो वो देखता है कौन है, उधर से आवाज आती है, वो कहती है मैं माया हूं। वो कहता है तुम मुझे उठाने क्यों आई। कहती है कि तुमने कल भगवान से मेरी इतनी कंप्लेंट कर दी कि यदि मैंने तुम्हें आज भी सुलाया तो फिर मेरी खैर नहीं। प्रेम से याद करना और उस अमृत वेले की तैयारी रात से चालू करनी है। उस दिन भी सुनाया था 8 बजे के बाद हो सके तो जितने संचार माध्यम, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब बंद हो जाने चाहिए। तथा कथित धार्मिक धारावाहिक सीरियल, ये सब के सब बुद्धि को भटकाने वाले हैं, हमें अपने मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें मदद करे, परंतु ये हमारी भ्रांति है कि इसमें अच्छी अच्छी बातें दिखाई जा रही है, शायद हमें मदद करेगी। क्या भगवान जो बातें बता रहे हैं वो क्या कम अच्छी है, जो हमें कहीं और अच्छी बातें ढूंढनी पड़ रही है, और वो भी वहां जहां चारित्रिक पतन हो चुका है। ऐसे वो कलाकार है सारे, वो हमें क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। कितनी माताएं यहां हैं जिन्हें सीरियल देखना बहुत पसंद है, हाथ खड़ा कर दो, बहुत है, कर दो, नहीं देखेंगे भाई लोग, उधर नहीं देखना। भाइयों को सीरियल कम पसंद है, न्यूज, स्पोर्ट्स, वो सब ज्यादा पसंद है। कितना समय उसमें चला जाता है पता ही नहीं चलता है। क्रिकेट देखते हैं तो देखना लोगों के अंदर में कितना एक्साइटमेंट होता है, जो देख रहे हैं उनमें एक्साइटमेंट होता है। सोचो उसी क्षण अगर अंतिम क्षण हो जाए, वो जीवन का अंतमति सोगति, किसकी याद में शरीर छोड़ रहे हो। सोचो उसी क्षण हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या यह नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे पास अभी हॉस्पिटल में एक स्वामी, वो जैन मुनि है, एक सुबह आए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ही आए हॉस्पिटल घूमने और सोचा थोड़ी जांच वगैरह कर लूं, सारी की सारी जांच कराई, शाम को दिखाया सब नॉर्मल, कोई तकलीफ, कुछ भी तकलीफ नहीं, और चले गए, कभी कोई तकलीफ थी नहीं। रात को 9 बजे आ गए हार्ट अटैक के साथ, सोचा भी नहीं था उन्होंने अचानक। सोचो हम मैच देख रहे हैं और उसमें इतना एक्साइटमेंट में है, आवेग चल रहा है, और उसी क्षण हम शरीर छोड़ दें, इतने लंबा समय का ज्ञान सब एक तरफ, जो योग किया था सब एक तरफ, जो मुरलियां पड़ी थी एक तरफ, बाबा से पता नहीं कितनी बार जाके मिले थे, सब एक तरफ। उस समय कुछ भी याद नहीं आएगा, उस समय तो बस जो सामने है वही छाया हुआ है। हमारी मृत्यु कैसी हो इसकी तो यह तैयारी है शरीर को छोड़ने की। अगर वो बाबा की याद में नहीं हो रही है तो जीवन में बहुत बड़ी भूल है कहीं ना कहीं। जो जो चीजों में आवेग हमारे मन में उत्पन्न होता है, उद्वेग उत्पन्न होता है, एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है, वो सभी बुद्धि को भटकाने वाली चीजें हैं। कई लोग रात में न्यूज देखते हैं फिर सोते हैं, अंतिम संकल्प जो है सोने का वही उठने का प्रथम संकल्प होता है। इसके लिए सोने की विधि कैसी हो यह भी महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली अमृत वेले का आधार है सोने की विधि। यदि बात करते करते मोबाइल पर टीवी पर लगे हुए हैं तो कैसे अमृत वेला शक्तिशाली होगा। एक शक्तिशाली अमृत वेले के लिए शक्तिशाली योजना की आवश्यकता है, शक्तिशाली प्लानिंग की। तो तीसरा कार्य जो करना है वो कौन सा है, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना। एक, अमृत वेले को रेगुलर बनाना, रेगुलर 5 मिनट भी इधर से उधर ना हो, 1 मिनट भी इधर से उधर ना, ऐसी आदत डालनी है। कर तो रहे हैं पर रेगुलर है, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए। क्यों? अगर आदत हो गई तो स्वतः होगा। इमैनुअल कैंट नाम का एक फिलोसोफर है, जर्मन का हुआ है। उसके जीवन में बताते हैं कि लोग अपनी घड़ी को उसको देखकर सेट करते थे, इमैनुअल कैंट। इतना वो समय का पाबंद था। सब एक साथ नहीं होगा पर जहां जहां हो सके हम करें, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमृत वेला। मधुबन में जस्टिस अय्यर आए थे एक बार, बहुत प्रसिद्ध नाम है, अभी अभी 2014 में शरीर छोड़ा है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। जगदीश भाई ने अपने अनुभव में लिखा है कि जब जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे, इंद्रप्रस्थ भवन में रुके थे, शांति स्तंभ के सीधा राइट साइड का, उन्होंने अपने, जगदीश भाई ने अपने लेख में लिखा है कि जस्टिस अय्यर सुबह 2 बजे उठ जाते थे। उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठने की। क्यों? उन्हें कोई आध्यात्मिक साधना नहीं करनी थी, किताबें लिखने के लिए उन्होंने आदत ही बना ली थी अपनी। 100 किताबें उन्होंने, 100 से भी ज्यादा लॉ से संबंधित किताबें लिखी है, कुछ अपनी भाषा में लिखी है मलयालम, पर लॉ से संबंधित कितना कठिन विषय है। वो आदत कैसी थी, 2 बजे उठने की आदत डाल दी, मतलब डाल दी। उनके पास ना तो कोई अलार्म, कुछ भी नहीं, स्वतः उठ जाते थे। यदि संसार का कोई व्यक्ति एक संसार की प्राप्ति या लक्ष्य के लिए यह कर सकता है तो हम भगवान से मिलने के लिए नहीं कर सकते? यदि हमारा कोई रिलेटिव आ रहा है सुबह सुबह 3 बजे स्टेशन पर, बहुत समय के बाद, और हमें आदत है उठने की 5 बजे, जाएंगे कि नहीं उस दिन? जाएंगे ना। माताओं का बेटा अगर आ रहा है विदेश से, सुबह 2 बजे स्टेशन पहुंच रहा है, जाएंगे कि नहीं उसको लेने? रास्ते तो ही नहीं। तो शिव पुत्र शिव रतन पाया है ना, अभी रत्नों की खान लेकर आया है यह पुत्र, तो इसके लिए उठेंगे नहीं? झोली भरने आया है सुबह सुबह, बाकी सब तो खाली करने वाले हैं, ये एक ही है जो भरता है। ऐसा पुत्र रत्न जिनको मिला है वो यदि सो जाए तो क्या कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को सबने कहा था बाबा आप उठो मत, बाबा की एक बार शुगर बढ़ गई थी और बीपी भी कम ज्यादा हो रहा था, डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल उठना नहीं अमृत वेला। मनमोहिनी दीदी और बाकी सारी दादियां बाबा के पास गई और बाबा को कहा बाबा आप कल से मत उठना। बाबा ने कहा मैं जिस्मानी डॉक्टर का सुनूं या रूहानी डॉक्टर का सुनूं, सुप्रीम सर्जन का सुनूं या इसका सुनूं, किसका सुनूं? फिर भी सभी ने कहा नहीं आपको आना नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है सोचता हूं। और दूसरे दिन अमृत वेले चुपचाप शॉल ऐसे ओढ़ के बाबा चुपचाप पीछे आके बैठ गए। 36 में ज्ञान मिला, 69 में बाबा गए, 33 साल की साधना में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। कैसा प्रेम होगा ईश्वर से, क्या हमारा ऐसा प्रेम है? प्रभु प्रेम किसे कहते हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वह प्रेम है? क्या यह आत्म प्रवंचना नहीं? क्या यह सेल्फ डिसेप्शन नहीं? कहीं हम स्वयं को ही नहीं धोखा दे रहे? दूसरा ग्रुप है कि उठता तो है परंतु नींद में चला जाता है अमृत वेला, उसका क्या किया जाए? चलो उठकर बैठने के तो मार्क्स मिलेंगे, जागरण की अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, शक्तिशाली स्थिति हो, सर्व संबंधों का अनुभव हो, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव, पांच स्वरूप का अनुभव, विश्व को सकाश, ये सारे ही कार्य करने हैं हमको। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ा। क्या इस विश्व शांति भवन सरोवर का कार्य पूरा हुआ है जो हम आराम से सो रहे हैं? कौन कौन है जो उसे अमृत वेला सकाश देते हैं याद कर कर वो हाथ खड़ा करो। रजनी दीदी बहुत ही कम है, इतने ही है बस, इतनी बड़ी सभा में ऐसे कितने हैं जो भूले हुए हैं कि ये कोई कार्य भी चल रहा है यहां पर, ऐसे भी है सभा में। अमृत वेले फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करके रोज यहां आना है, हर दिन उन सभी आत्माओं को सकाश देनी है जो इसमें विघ्न रूप है या बन सकते हैं, उस एक एक आत्मा को परमात्मा प्रेम की सकाश देनी है, एक एक आत्मा को शक्ति से भरना है, द्वेष घृणा अगर ये सब है कहीं ना कहीं तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे हुए? हो सकता है कोई एक आत्मा हमें बहुत सता रही हो सकता है कोई एक आत्मा हमें पीड़ित कर रही हो, दुख दे रही हो, विघ्न बन रही हो, माया रूप में आ रही हो, पुराने हिसाब किताब हो उसके साथ, तो क्या करना है? दुखी होना है, सोचना है ये ऐसा क्यों करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचे हम राइट है ये रॉन्ग है, वो ठीक होगा? रिपेयर करना है सभी रिलेशंस को, हमारे आसपास के जितने हमारे संबंध है, इस अलौकिक परिवार में और लौकिक परिवार में, सारे के सारे। हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, उन्हीं की तरफ से है, वो दूसरी बात है, परंतु हम जो है हमारे मन में उनके विरुद्ध सूक्ष्म घृणा, हिंसा, बदला, ऐसा कोई भी भावना, और जिस पे हमें शक है कि ये हमारे विरोध में कुछ कर रहा है, उसके साथ अपना व्यवहार न बदले। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। हो सकता है कोई हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमारा व्यवहार उनके प्रति न बदले। एक बार बहुत समय पहले कोई एक जोन में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, बहुत वहां की सभी बहनों को अज्ञात खत आए थे, उनके जो प्रमुख थे उनके विरुद्ध, और उनको कहा गया था कि इनको छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। दादी जानकी तक यह बात गई थी और उन बहनों ने ही बताया था। दादी ने कहा था स्टूडेंट्स में से जिस जिस पर आपको शक है कि इन्होंने ऐसा किया है उनके प्रति अपना व्यवहार नहीं बदलना। जो प्रेम से पहले चलते थे वैसे ही चालू रखना, नहीं तो सूक्ष्म घृणा मन में उत्पन्न होगी। एक बार घृणा चली गई, एक बार शक चला गया, शक और घृणा ये तो ऐसी चीजें हैं, एक बार मन में प्रवेश करती है बहुत मुश्किल है उसको निकालना। किसी पत्नी को यदि शक हो जाए अपने पति पर तो कितने भी कुछ भी कर ले वो मानती है क्या? मुश्किल है। ऐसा है शक, ऐसी है घृणा। इसके लिए रिपेयर करना है रिलेशंस को, उसके लिए दो चीजें, माफ करना और माफी मांगना। ये कार्य रोज करते रहना। अगर कोई एक आत्मा है जो हमें परेशान कर रही है, रोज अमृत वेले खास उस एक आत्मा को इमर्ज करके उससे माफी मांगना। जरूर किसी जन्म में हमने उसे बहुत बहुत सताया होगा। रोज करना, फिक्स टाइम पे करना, लंबा समय तक करना। एक समय आएगा एकदम हल्कापन आएगा और पता चलेगा कि माफी हो गई, हमने कुछ कहा नहीं मुख से, केवल संकल्प। और स्वतः ही उसके संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे। जो अभी विरोधी है वो सहयोगी हो जाएगा, जो अभी विघ्न रूप है वो सबसे बड़ा सेवा का साथी बनेगा, हैंड बनेगा, सहयोगी बनेगा। माफ करना और माफी मांगना ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, हर दिन करना है। टाइम भी बता देता हूं कब करना है, 4:30 और 5:45 के बीच, 4:30 और 5:45 के बीच। पहले अमृत वेला पूरा करो, उसके बीच का या फिर अंतिम 5 मिनट जो है उसमें, लास्ट 5 मिनट्स ऑफ अमृत वेला, उसमें आत्माओं को इमर्ज करना, उनसे क्षमा मांगना कि हमें माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी। और बाहर से व्यवहार नहीं चेंज करना, परंतु बैकग्राउंड में यह कार्य चालू रहे, हो सके तो 2 बार, यदि बहुत बड़ा विघ्न है तो 2 बार, सुबह 1 बार और फिर शाम को 1 बार, खास बैठकर रोज, तब तक जब तक माफी ना हो जाए। एक दिन वो स्वतः ही परिवर्तन होगा, क्योंकि उसको परिवर्तन करने का कोई मार्ग नहीं है। तर्क से वो परिवर्तन नहीं हो रहा, वाचा से नहीं होगा, काउंसिलिंग से नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा, वो सब तो कर चुके हैं। कोई SMS काम नहीं करेगा, कोई WhatsApp काम नहीं करेगा, WhatsApp से तो और ही संबंध बिगड़े हैं लोगों के, जो भी स्टडीज हुई है। एक इधर से मैसेज, एक इधर से मैसेज, जो मैसेज भेज रहे हैं वो मन में नहीं है, बस उंगलियां चल रही है, मन में वो संकल्प नहीं है, वो भाव भी नहीं है, परंतु टाइप हो गया। अब टाइप कर दिया तो अब उसको डिफेंड करते हैं कि हां यही सही है, विचित्र विडंबना है। इसके लिए आत्माओं को रोज इमर्ज करना, जिन जिन को हमने दुख दिया, जिन जिन को हमने सताया, जिन जिन को पीड़ा पहुंचाई, जिन जिन को अपशब्द बोले, जिन को व्यंग्यवान मारे, कमेंट्स किए, शायद किसी जन्म में उनके मृत्यु का कारण हम बने हो, तो वो बदला नहीं लेगा? लेगा, तो हम क्या करें? वही करें जो वो कर रहा है और नए हिसाब तैयार करें। हमें तो फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना, जो है वो ठीक है, अब इन्हीं को समाप्त करना है। तो रोज अमृत वेले माफी मांगना और कुछ आत्माओं को माफ कर देना, जिन जिन ने हमारे साथ बुरा किया है, हमको लगता है उन्होंने नहीं करना चाहिए, शायद बहुत सताया है, हमें गिराने की कितनी कितनी चेष्टाएं की है, तो उन लोगों को माफ कर दो, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल फॉरगिव, ये कार्य करने हैं। तो क्या करना है, चौथा पॉइंट रिपेयर करना है, सारे ही संबंधों को रिपेयर करना है, जिस जिस संबंध में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी है। हम इधर से आ रहे हैं, उसने देखा तो वो उधर, हम इधर, क्यों ऐसा, वो वहां बैठा है तो हम उधर से जाएंगे, द्वेष क्यों भरा है इतना, क्यों इतनी घृणा है, सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म घृणा भाव, माफ कर दो या माफी मांग लो, खत्म। सबसे आसान तरीका है इस सूक्ष्म घृणा से मुक्त होने का। तो यह था चौथा, पांचवा, इन 21 दिनों में एक अपने कड़े संस्कार पर काम करना है। ऐसा वो कौन सा संस्कार है, वो कौन सी आदत है, सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रही है, पता है ये नहीं करना चाहिए फिर भी आदत टस से मस नहीं हो रही है, जैसी की वैसी ही है, हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना है फिर भी देख रहे हैं, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल बहुत जरूरी साधन है परंतु भटकाने वाले भी है, हमें पता है ये हमें नहीं देखना चाहिए फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। कितने ही युवक व्यसनाधीन हो गए हैं, क्यों, तो एक संस्कार पर काम करना है। मेरा वो कौन सा संस्कार है जो नहीं बदल रहा है, एक कड़ा संस्कार जिसके लिए सब कुछ कर लिया फिर भी वैसे के वैसे ही है, तो क्या निराश हो जाए, दुखी हो जाए, हताश हो जाए, हतोत्साहित हो जाए। एडिसन जो था वैज्ञानिक, 3 साल में 700 प्रयोग किए, सारे के सारे असफल, उसके सारे मित्रों ने उससे कहा आप छोड़ो, अब नहीं होने वाला ये काम। उसने कहा कि क्यों छोड़ू, 3 साल तो हुए हैं खाली, 700 प्रयोग असफल हुए, हो सकता है ये 1000वें प्रयोग में सफल होने वाला हो, तो कम से कम अब मुझे ये पता है कि 700 मार्ग ऐसे हैं कि जो गलत है, एक दिन ये गलत ही मुझे सत्य तक पहुंचाएगा। एक संस्कार हमारा है, हमने 10 प्रयोग कर लिए, 10ों के 10ों काम नहीं किए। उदाहरण के लिए कोई संबंधी ले लो, हमने हर तरीके से उस व्यक्ति को, उस आत्मा को समझाने की, माफी मांगने की सब प्रयत्न कर लिए, तो क्या उदास हो जाए, हताश हो जाए, जरूर कोई ना कोई मार्ग अब भी है, हम उस तक नहीं पहुंचे, हमने अब तक नहीं किया है, वो 1000वां है, वो यहां है, हम 700 तक है, 3 साल हो गए, 700 बार हमने कोशिश की, परंतु 300 मार्ग और है, वो भी गलत, उसके बाद सत्य मार्ग है। इसके लिए मेथड्स ढूंढना है क्या करूं, और कभी कभी सत्य जो है अज्ञात अपरिचित लोगों के मुख से निकल जाता है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, अगर उनको यह बात बताई जाए तो शायद वहां से आ जाएगा। इसके लिए संसार में काउंसलर्स क्यों है, काउंसलर्स जो होते हैं वो परिवार का सदस्य नहीं होता है, बाहर का होता है, उसको अपनी समस्या सुनाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देता है कि उसमें से हल आ जाता है। स्पिरिचुअल काउंसिलिंग, बहुत सारे काउंसलर्स है संसार में, साइकोलॉजिकल काउंसिलर, क्लिनिकल काउंसलर्स, तो हल तो है, हम पहुंचे नहीं है, वो यहां है, हम यहां है, हम कुछ और कर रहे हैं परंतु सब गलत हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, परंतु मार्ग है, देयर इज अ वे, देयर इज एन आंसर, वहां तक पहुंचना है। तो एक कड़े संस्कार पर सबको काम करना है, पहले तो ढूंढना है कि वह कौन सा है और उसकी प्लानिंग बनानी है कि ये वो संस्कार है। क्रोध, क्रोध आता है विशिष्ट परिस्थितियों में, क्रोध आता है, वैसे क्रोध नहीं आता है, परंतु हां जब कोई निंदा करता है, झूठे आरोप लगाता है, इल्जाम लगाता है, तब क्रोध आता है। तब क्या किया जाए? अभी तो क्रोध आने का कोई सवाल नहीं, यहां आराम से बैठे हैं तो कोई क्रोध नहीं। यहां से घर में जाते ही यदि किसी ने विरोध किया, व्यंग बांध छोड़े, मजाक उड़ाया, वहां क्रोध आता है। कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें क्रोध आता है? दोषारोपण जब होता है, झूठा इल्जाम, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जाए तब क्रोध आता है। बाबा ने इसका भी उत्तर दिया है, वो झूठ बोल रहा है, तुम क्रोध कर रहे हो, समान हो गया। वो झूठ बोल रहा है, वो तो गलत है ही, पर तुम क्रोध कर रहे हो। क्रोध तो अग्नि है, झूठ से भी खतरनाक। एक बार क्रोध करने के बाद कितना समय तक योग लगता है? फिर मुश्किल है। जापान के किसी गांव में एक युवा सन्यासी रहता था, और वो सन्यासी इतना अद्भुत सन्यासी था कि सारा गांव उसको मानता था, सारा गांव उसके चरणों में आके गिरता था। वो जो बोलता था इतना तेजस्वी और ओजस्वी था, और बहुत अच्छा सन्यासी। एक दिन अचानक गांव की किसी कन्या, किसी एक स्त्री ने कहा, जो कि गर्भवती थी, उसने कहा कि मेरा जो बच्चा है उसका पिता ये सन्यासी है। क्या हुआ होगा? सारा के सारा गांव पहुंच गया और उसकी झोपड़ी को जला डाला। अब तक जो उसके चरणों में गिरते थे, अब वो शत्रु बन गया। उसके सारे वस्त्र फेंक दिए, उसकी किताबें थी वो फेंक दिए, और वो बच्चा लेके गए, और बच्चा हो गया था सॉरी, वो बच्चा ले गए और उसके चरणों में पटका। और उससे कहा, ये लो। उसने पूछा, ये कौन बच्चा है? उसने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है। उसने कहा, अच्छा मेरा है, शायद होगा, परंतु यह कितना रो रहा है, इसको कोई दूध तो दो। और उसको बहुत सारी गालियां देकर वो सब लोग चले जाते हैं। बेचारा वो सन्यासी दोपहर को भिक्षा लेने निकलता है उस बच्चे को लेकर। कैसा दृश्य है, सन्यासी और एक बच्चा, वो भी जोर जोर से रो रहा है। जिस घर में जा रहा है दरवाजा बंद, यहां जा रहा है वहां जा रहा है, और फिर जाते जाते उसी घर में पहुंचता है जहां वो कन्या रहती है। और जैसे ही वो स्त्री देखती है कि ये सन्यासी मेरा बच्चा लेके जा रहा है, और मैंने ये क्या पाप कर दिया, इसके वास्तविक पिता को छिपाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, तो अपने पिता से जाके कहती है। और फिर वो उसके पिता और सारे गांव वाले वापस सन्यासी के पास जाते हैं और कहते हैं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहते हैं, अच्छा मेरा नहीं है तो नहीं होगा, पहले इसको दूध तो दो, मेरा नहीं शायद किसी और का होगा। वो पूछते हैं, तुम भी कैसे आदमी हो, जब ये तुम्हारा था ही नहीं तो हमने जब तुम्हारी झोपड़ी जला डाली और तुम्हारा सामान फेंक दिया और तुम्हें पीटा, तब तुमने क्यों नहीं कुछ कहा? उसने कहा, कहने से क्या होता है, सत्य तो सत्य ही है, सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य के सूर्य को अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, असत्य के बादल छिपा नहीं सकते। सत्य को एक ना एक दिन प्रकट होना ही है। हम सत्य की, हमारे सत्य की शक्ति की वो टेस्ट है, परीक्षा है। परिस्थितियों से घबराना नहीं, आज का स्लोगन याद है ना, शिक्षक समझो उसको और पाठ पढ़ो। झूठा आरोप परंतु क्रोध नहीं, कितनी ऊंची अवस्था है, कितनी ऊंची अवस्था है। नेक्स्ट, कितने हो गए, पांच। छठवां, रोज एक टॉपिक पर लिखना है, 21 दिन 21 टॉपिक्स पर लिखना है। वो टॉपिक्स कहां से लेंगे? स्लोगन से, वरदान से, या तो प्रश्न के उत्तर से। हो सके तो स्लोगन से ले ले, जैसे आज की मुरली में घबराना नहीं, मुझे डर किस किस बात से लगता है, उसकी एक लिस्ट निकालना। डर कहां कहां है मुझे? मृत्यु का डर, बीमारी का डर, स्वजनों की मृत्यु का डर, स्वजनों की बीमारी का डर, आर्थिक हानि का डर, अज्ञात का डर, पता नहीं पर डर है, अज्ञात है, अननोन, फियर ऑफ द अननोन क्या है? तो रोज एक टॉपिक पर लिखना। छह हो गए। अंतिम जो कि रोज करना है और जो शायद हम नहीं कर रहे हैं, वो है नुमा शाम का योग। दिन भर में जो धूल और मिट्टी उड़ गई है चित्त पर, चेतना पर, उसको साफ करनी होती है डेली शाम को। बाबा को दो बार चाट देना है, एक शाम को एक रात को। शाम का जो चाट है उसमें दिन भर क्या हुआ इसका समाचार बाबा को सुनाना। याद का चाट नहीं कह रहे हम, याद का चाट रात में, शाम का चाट जो है वो वर्बली मौखिक रूप से बाबा को सुनाना, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और हो सके तो ये जो समय है 6:30 से 7:30 का, या 7 से 7:30, जहां कहीं हम हो, आदत बनानी है योग करने की, कम से कम बैठ जाए। अगर व्यस्त है तो चलते फिरते, ऑफिस में है तो चलते फिरते, ट्रैवल में है तो चलते वहीं पर बैठकर, परंतु ये जो पीरियड है इसमें और एक नियम बना सकते हैं, सुबह थोड़ा मौन 8 बजे तक, और शाम को जैसे कार्य पूर्ण होते हैं वापस 8 के बाद मौन। तो ये 7 चीजें अगले 21 दिन रोज करनी है। फिर से रिवाइज करेंगे, सबसे पहला अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन करना है, दूसरा साकार मुरली से 3 जगह से का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, डिस्कस करना, चर्चा करना, पठन पाठन करना, तीसरा अमृत वेला, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना। जिन्होंने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी है छोटी अमृत वेले की, वो उसको सबसे पहले पढ़ना चालू करें। जिनका अमृत वेला एकदम कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, कभी करते कभी नहीं करते, मिस करते, सबसे पहले तो ज्ञान बढ़ाओ उसके बारे में, उसका महत्व क्या है, तभी तो करेंगे। पता ही नहीं महत्व, हर बार तो कोई नहीं बताएगा। उस किताब में सब लिखा है, अमृत वेला किताब है, वो ले लो और उसका अध्ययन। तीसरा, चौथा रिलेशनशिप की मरम्मत करनी है, जहां जहां जो जो कमी है, जहां जहां कुछ ना कुछ मनमुटाव सा है, वैमनस्य है, उसको ठीक करना। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ठीक करने की वही विधि है सकाश, सकाश, क्योंकि जितना शब्दों में आते हैं और उलझते जाते हैं, उधर से 4 शब्द, इधर से 6 शब्द, शब्द शब्द से टकराते हैं, संस्कार संस्कार से टकराते हैं, और वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। जितना टकराव उससे नए टकराव का जन्म लेता है। सोचते हैं अब सांप समीप जाए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, दोनों मिलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए, और नई मिसअंडरस्टैंडिंग लेके फिर जुदा होते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो मिटी नहीं, अब मीटिंग इसलिए रखी थी कि ये मिट जाए, चाहे दो की चाहे ग्रुप की, पर उससे और टकराव। सकाश, सकाश में बहुत बल है, और संगठित अगर सकाश हो उसमें तो बहुत अधिक बल है। इसके लिए हम कह रहे थे ये जो निर्माण का कार्य चल रहा है, सभी ने कल से अमृत वेला सूक्ष्म रूप में यहां आना और यहां को, इस वातावरण को, इस निर्माण के कार्य को सकाश देना। इसके कार्य में जो जो बाधक है, जो जो बाधा है, जो जो विघ्न रूप है, उन आत्माओं को प्रभु प्रेम की किरणें देना, परमात्मा स्नेह की किरणें देना, ताकि वो स्वतः ही सहयोगी हो जाए। आज की मुरली में है ना, परवाने स्वतः ही आएंगे दिए पर, क्षमा पर स्वतः, तो सारी आत्माएं फिदा हो जाए, स्वतः ही ये कार्य हो जाए। अगर सारे एक साथ रोज अमृत वेला सकाश दे तो कुछ चमत्कार होगा। इतनी पावर है सकाश में, इतनी शक्ति है संगठित सकाश में, असंभव संभव हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखना संस्कार पर काम करना, अपने एक संस्कार पर। पहले तो आइडेंटिफाई क्या है, कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर काम करना, प्लान बनाना, फिर इंप्लीमेंटेशन। अगर नहीं हो रहा है तो किसी से मदद लो, अगर नहीं कोई मदद करने वाला भी नहीं है तो ज्ञान से मदद लो, कहीं ना कहीं मुरलियों में उसका उत्तर है। नेक्स्ट टॉपिक पर लिखना, जैसे बच्चे निबंध लिखते हैं, निबंध लिखने को कहो तो स्वतः ही लिखना चालू हो, वैसे उनको कहो कि निबंध लिखो सूरज पर, कहेंगे हमको नहीं आता। लिखने को दो, कॉपी पेंसिल दो, तो स्वतः ही लिखने लगेंगे। तो लिखना एक ऐसी आदत है, ऐसी एक आदत है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होते हैं लिखकर। यहां पे जो है सब कंफ्यूज है, हमें ही पता नहीं हमारे क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम पॉइंट्स बनाते हैं 1 2 3, वो क्लियर होने लगते हैं। तो लिखो, ज्ञान की भी पॉइंट्स और जीवन की भी पॉइंट्स, लिखना बहुत अच्छी आदत है। नेक्स्ट नुमा शाम का योग। तो अभी शाम को अव्यक्त मुरली का हम रिवीजन करेंगे। जिन्होंने अपनी डायरी में लिख के रखी है सुबह की मुरली, वो रिवाइज करें, उसके बाद ही इस क्लास में आए। जिन्होंने सुनी है वो मन ही मन याद करने का प्रयत्न करें। जो क्विज यहां हुई थी उसके पॉइंट्स